Well, it's a great joy for me to be with you in the next 2 days.
ये मेरे लिए बड़ा ही आनंद की बात है आपके बीच में अगले दो दिन रहना आपके साथ.
This has been my first visit together with my wife here in India.
ये मेरी पत्नी के साथ भारत में पहली बार आना हुआ है.
And we have thus far enjoyed every moment of it.
और अभी तक हमने सारे क्षणों का आनंद उठाया है बहुत अच्छे.
We have enjoyed the fellowship.
हमने संगति का आनंद उठाया है.
We have enjoyed the food.
हमने खाने का आनंद उठाया है.
And we've also simply enjoyed the fun of being here.
और हमने यहाँ पे रहने का आनंद भी आपके साथ में उसको उठाया है.
Of course, the heat has been a different story.
यद्यपि गर्मी एक दूसरी कहानी बता रही यहाँ पे.
I didn't know that people could survive in this kind of heat.
मैं नहीं जानता था कि लोग इतनी गर्मी में भी जिंदा रह सकते हैं.
But clearly, you are surviving, so it should be possible.
लेकिन आप साफ-साफ दिख रहे हैं कि आप जिंदा हैं अभी भी, तो हो सकता है ये संभव है कि इतनी गर्मी में भी बचा जा सकता है.
I would like to encourage you to continue thanking God for what He is doing among you.
मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें कि परमेश्वर क्या कर रहा है आपके बीच में.
Because clearly God is at work here.
क्योंकि स्पष्ट रीति से परमेश्वर यहाँ पे कार्य कर रहा है.
And I will be carrying home with me news about the great works of God.
और जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं अपने घर यहाँ से परमेश्वर के महान कार्यों के संदेश को लेकर के जाऊंगा.
In your country.
आपके देश में.
Well, I've been asked to deal with the theme of true prosperity.
मुझसे कहा गया है कि सच्ची समृद्धि के बारे में बातचीत किया जाए.
And the reason why this is a pertinent subject.
और यह कारण यह है कि क्यों हमारे लिए ये हमसे वास्ता रखता है ये विषय.
Is because there's been a lot of talk about public prosperity within Christian circles.
क्योंकि मसीह समाज के भीतर बहुत ही अधिक बातचीत की गई है समृद्धि के बारे में.
And the greatest amount of noise about prosperity is coming from what is called the prosperity gospel.
और सबसे ज्यादा शोर या आवाज इस समृद्धि के बारे में जो हाँ आ रही है वो आ रही है एक ऐसे मसीह समाज से जो कि समृद्धि के सुसमाचार का प्रचार करते हैं.
And many individuals who at one time would have been sound in their understanding of prosperity.
और बहुत सारे लोग एक समय जबकि अपने समृद्धि के बारे में समझ को लेकर के सही समझ रखते थे.
Have since ended up going astray because of the wrong teaching.
और समस्या यह है कि गलत शिक्षा के कारण यद्यपि उन्होंने शुरुआत सही की थी लेकिन अब वो लोग गलत दिशा में जा चुके हैं.
And therefore it is extremely important for each one of us to understand true prosperity from the scripture.
और इसलिए हम सब के लिए बड़ी यही आवश्यकता है कि हम लोग वचन के अनुसार से समझने पाए जानने पाए कि सच्ची समृद्धि आखिर होती क्या है.
And so in many ways I feel like Jude in his epistle before the book of Romans
or
the book of Revelation.
और कई बार जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो यहूदा की पत्री जो लिखी गई प्रकाशित वाक से पहले उसके समय में मैं पहुंच गया हूँ.
Where he says in the third verse,
और वहाँ यहूदा की पत्री में उसके तीसरे पद में वो ये कहता है
that he was very eager to write to the brethren about their common salvation.
वो कहता है कि वहाँ पे मैं तुम्हारे उद्धार के विषय में लिखने के लिए बड़ा संभव कर रहा था हर संभव प्रयत्न कर रहा था.
But that he has found it important to instead write to them to contend for the faith.
लेकिन मैंने ये लिखना अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुमको उस विश्वास के लिए यद्यपि संघर्ष करते रहो और इसके लिए मैं तुम्हें लिखूं चिट्ठी.
In other words, for the truths of the gospel delivered once and for all to the saints.
और दूसरे शब्दों में हमारा कहने का मतलब है कि जो संतों को सुसमाचार एक बार और हमेशा के लिए जो दे दिया गया था उसके बारे में पौलुस वहां पे यहूदा बात की आ रही है यहूदा पत्री में.
Whereas would have loved to teach a more positive message.
यद्यपि वो चाहता था यहूदा कि और सकारात्मक संदेश के बारे में बातचीत करें वहाँ पे.
Because of that which was negative in the church, he needed to address it.
लेकिन समस्या ये थी कि कलीसिया में उस समय यहूदा की पत्री लिखते समय कलीसिया में बहुत ही नकारात्मक बातें चली थी, इसलिए यहूदा को भी नकारात्मक बात के बारे में बात करना पड़ा, यद्यपि वो सकारात्मक बारे में बात करना चाहता था.
And that's what I'll have to do with you today and tomorrow.
और लगभग ऐसा ही कुछ मुझे भी आज बाध्य होकर के आज और कल करना पड़ेगा.
Let me give you something of an idea of the way in which we will travel in the next 2 days.
और मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि अगले दो दिन में हम लोग कैसे अपने सत्रों में किस तरह से अध्ययन करेंगे.
First of all, in this session, I want us to look together at the subject of what prosperity gospel really teaches.
सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो समृद्धि का सुसमाचार है वो वास्तव में सिखाता क्या है, इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे.
And I hope you will notice that this is in contrast to biblical or true prosperity.
और मेरी आशा है कि जब हम सच्ची समृद्धि, जब हम लोग ये इस समृद्धि के सुसमाचार के बारे में बात करेंगे तो आप देखने पाएंगे कि जो सच्चा सुसमाचार है उसके ये विपरीत है, उसके उल्टा है.
And then in the second session we will look at why we should be concerned about this wrong teaching about prosperity.
और फिर दूसरे सत्र में हम लोग देखेंगे कि क्यों करके आपको और हमको ये जो झूठी शिक्षा है समृद्धि के संबंध में उससे लेकर के हमको और आपको चिंता प्रकट करनी चाहिए.
Prosperity gospel teaches that there are 3 things we must do in order to be prosperous.
और जो समृद्धि का सुसमाचार है वो हमको बताता है कि 3 ऐसी चीजें करना चाहिए जिनके द्वारा हम समृद्धि प्राप्त कर सकते, 3 ऐसी बातें हमें करना चाहिए.
I will mention them in this current session.
और इस बात को हम अभी के सत्र में बताएंगे.
But in the third session we will now look at them to see whether they are really biblical.
और फिर हम आगे के सत्र में देखना चाहेंगे कि यह जो 3 बातें ये लोग कहते हैं कि होना चाहिए समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, क्या वो वास्तव में बाइबल पे आधारित हैं कि नहीं है.
And then in our last session today,
और फिर हम आज के अपने अंतिम सत्र में
we will deal with yet another teaching of the prosperity gospel.
और समृद्धि के सुसमाचार के संबंधित एक और शिक्षा के बारे में लोग बातचीत करेंगे.
And that is that it's not only sin that was dealt with on the cross, but also sickness was taken away.
और उनका ये दावा है जो समृद्धि के सुसमाचार वाले लोग हैं, वो ये दावा करते हैं कि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमारे पापों का लेखा लिया, को उसको संभाल लिया, लेकिन हमारी बीमारियों को भी उसने हटा दिया क्रूस के ऊपर. उस विषय के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे.
That is the way in which by his stripes you have been healed is understood.
उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, इस वाक्य का अर्थ झूठी और जो समृद्धि से संबंधित सुसमाचार के प्रचारक हैं वो लोग ऐसा ही समझते हैं कि हमें चंगाई प्राप्त हो गई है.
And so what we will do in the last session today is go to that same passage and see what it really teaches.
और तो हम लोग आखिरी सत्र में क्या करेंगे, हम लोग उस स्थल को खोलेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो स्थल आखिर में वास्तव में हमको बता क्या रहा, कहना क्या चाह रहा हमसे.
Tomorrow we will resume our meetings by looking at the biblical teaching concerning wealth.
और कल हम लोग अपने सत्र को आरंभ करेंगे, बाइबल की शिक्षा को देखेंगे कि वो कहता क्या हमसे हमारे धन के बारे में, संपत्ति के बारे में.
Should we be pursuing money?
क्या हमें पैसे के पीछे पड़ना चाहिए, क्या हमें पैसे कमाने की चाहत होनी चाहिए हमारे अंदर?
And one of the areas which has prominence in prosperity gospel teaching is that you must sow the seed in the ministry of the preacher.
और एक जो बड़ी ही मुख्य बात है, पहचान है समृद्धि के सुसमाचार वालों के बारे में, वो ये कहते हैं कि जो प्रचारक है उसकी सेवा में आपको बीज बोना चाहिए, कहने का मतलब आपको आर्थिक सहयोग करना चाहिए.
And that in doing so, you are sowing in fertile ground.
और जब आप बीज बोते हैं सुसमाचार प्रचारकों की सेवा में, मतलब आर्थिक सहयोग करते हैं, तब आप एक बड़े ही उपजाऊ भूमि में बीज बो रहे हैं. मतलब समझ रहे ना क्या कह रहे हैं?
We want to look at that in that session.
और उस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस सत्र में.
About this man of God phenomenon.
और ये जो परमेश्वर के लोग अपने आप को करके ऐसा संबोधित करते हैं, इसके विषय में भी हम बातचीत करेंगे, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे.
And then in our second last session.
और फिर उसके बाद अपने आखिरी सत्र में,
we will be looking at what Christianity is all about.
हम देखेंगे मसीहत किस चीज के बारे में बात करती है.
Is it about my happiness or is it primarily about the glory of God?
क्या मसीहत मेरी स्वयं की खुशी के बारे में प्राथमिक तौर से है, कि मसीहत प्राथमिक तौर से परमेश्वर की महिमा के बारे में, उसको भी हम लोग देखेंगे.
Should I be going to church so that in giving God worship on Sunday, He might make me a rich man for the next 6 days.
क्या हमें कलीसिया जा करके इसलिए आराधना करना चाहिए ताकि जब हम उसको कुछ दान दें तो अगले 6 दिन तक क्यों मुझे खुश और समृद्ध व्यक्ति बनाएगा? क्या हमें इसलिए आराधना करनी चाहिए प्रभु की?
Or should I be going to church because I owe God worship?
और क्या हमको कलीसिया में आराधना करने इसलिए जाना चाहिए रविवार को क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमें उसकी उसकी आराधना हमें करना ही करना है?
I'm hoping that by that seventh session, you will be very clear that most of what we are hearing today is not about true prosperity.
और मेरी आशा है कि सातवां सत्र खत्म करते करते हम लोग आप लोग समझ जाएंगे कि जब हम लोग समृद्धि के बारे में सुनते हैं प्रचारकों से, अधिकांश वो समृद्धि, सही समृद्धि के बारे में हम नहीं सुन रहे हैं.
That it will be clear to you that it is a counterfeit.
और हम मेरी आशा कि आप ये जान रहे हैं साफ साफ कि वो नकली समृद्धि है या झूठी समृद्धि है.
And so in the last session, we will be seeking to answer the question, what must we do about this?
तो फिर हम आखिरी सत्र में ये प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए इस विषय के बारे में?
Back home in Zambia, we have men who are con men.
मेरे देश में, मेरे देश जाम्बिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़े ही धोखेबाज लोग हैं.
And usually they are very clever.
और ऐसे लोग जो बड़े ही चालाक होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं एक मायने से.
They promise you that if you give them so much money, they will multiply it for you.
तो इस तरह के जो चालबाज लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? आपको वादा करेंगे कि तुम मुझे कुछ पैसा दो, अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो हम उसको 3-5 गुना बढ़ा करके तुम्हें वापस कर देंगे.
And so if you give them 10,000 rupees,
अगर आप उनको 10,000 रुपया देंगे, आप
they will give you back 20,000 rupees.
और वो आपको 20,000 रुपए वापस कर देंगे.
If you give them 20,000 rupees,
अगर आप उनको 20,000 रुपए वापस देंगे, आप उनको
they will give you 40,000 rupees.
वो 40,000 उसको आपको पलट करके वापस देंगे.
And so of course you are not a fool, and so you begin with little money.
और क्योंकि अब आप लोग, हम सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, मूर्ख नहीं, तो हम क्या कहते हैं, थोड़े से पैसे से शुरुआत करते हैं ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना.
And sure enough, they multiply it and give it back to you.
और जब आप आरंभ में, शुरुआत में उनको थोड़ा सा पैसा देते हैं, तो वो लोग वास्तव में क्या करते हैं, दुगना करके आपको लौटा देते हैं वो पैसा शुरुआत में.
So you go home thinking, wow, this thing is working.
तो फिर आप घर जाते कहते हैं, आह क्या बात है, ये बात सच में कारगर हो रही है.
So you end up multiplying the money you give to them.
और फिर आप क्या करते हैं, शुरुआत क्या भरत भैया, आपने छोटे से पैसे से, और फिर उसके बाद फिर आप उसको ज्यादा पैसा देने के तैयार हो जाते हैं.
And they give you back double the money you gave them.
और फिर जो आपने ज्यादा पैसा दिया उसका फिर वो दुगना करके फिर से आपको दे देते हैं वो.
Finally, a man decides he's going to sell everything he has and give them the money.
और फिर अंत में क्या होता है? फिर कुछ लोग होते कहते हैं, अच्छा अगर ये बात तो सही है, अब मैं सब कुछ बेच दूंगा अपना और सारा पैसा इसको दे दूंगा.
When they do that,
और जब लोग ऐसा करते हैं
The corn may disappear into thin air.
वो जो चालबाज आदमी होता है वो हवा में गायब हो जाता है.
People are reduced to abject poverty.
जो लोग होते हैं वो लोग संपूर्ण गरीबी में रह जाते हैं उसके बाद.
The question is, what should we do about such con men?
और प्रश्न ये है कि इस तरह के जो लोग धोखा करते हैं उनके बारे में हम लोग क्या करें, उनसे कैसे व्यवहार करें?
Should we simply say, well, at least I have not been deceived?
क्या हम सिर्फ इतना कहें, अच्छा चलो प्रभु का धन्यवाद हो, कम से कम मुझे धोखा नहीं मिला, मैं ठीक ठाक हूं?
Or should we expose their confidence tricks and warn people against it?
और या फिर हमको उनके जो धोखे की जो नीतियां हैं उनको लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहिए और लोगों को हमें चेतावनी देना चाहिए क्या हमें ऐसे करना चाहिए?
That's what we'll be looking at in the last session.
आखिरी सत्र में हम लोग इस प्रश्न के बारे में बातचीत करेंगे.
To begin with, therefore, let's quickly go to Matthew chapter 6.
मत्ती उसका 16 छठे अध्याय में ऐसा जल्दी से खोल लीजिए, हम लोग वहां पे आरंभ करेंगे. मत्ती उसका छठा अध्याय.
And begin with the verse that we have up here.
और यहाँ पे जो पद है उसको हम देखेंगे.
Which is verse 21.
यहाँ पे है 21 पद, मत्ती 6:21.
Matthew 6 and verse 21.
मत्ती 6 उसका 21 अध्याय.
The Lord Jesus Christ says there, because where your treasure is, there your heart will be also.
और मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है या जहां पे तुम्हारा खजाना है वहीं पे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा.
Here Jesus was teaching us about thieves of eternal rewards.
और यहाँ पे हमको बताया जा रहा है उन चोरों के बारे में जो हमारे अनंत काल के उपहार दाम के धन को चुरा सकते हैं.
And it's something we'll come and look at together first thing tomorrow.
और इस चीज को हम लोग कल सबसे पहले इसी बात को देखेंगे.
But what I want us to notice there is that the Lord Jesus Christ, in a sense, expects all of us to have treasure.
एक मायने में पर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें से प्रत्येक जन से आशा रखता है कि हम सब के पास धन होगा.
He expects all of us to be wealthy or prosperous.
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, आशा रखते हैं कि हम सब के सब धनवान होंगे और हम सब के सब समृद्ध होंगे. प्रभु जी चाहते हैं इस बात को.
And yet it seems to be suggesting that you will either be prosperous on earth or prosperous in heaven.
लेकिन हमको ये बताया जाता है यहाँ पे कि हमको समृद्ध होना तो जरूर है, लेकिन या तो हम समृद्ध यहाँ पे होंगे या तो हम समृद्ध वहां पे स्वर्ग में होंगे.
And it is dependent on what you yourself will do.
और ये निर्भर होगा आपके ऊपर कि हम स्वयं क्या करते हैं.
He says there, do not, verse 19, do not lay up for yourselves treasures on earth.
और हमें करना क्या है, क्या करना है? मत्ती 6 उसके 19 पद लिखा है, अपने लिए मत करो क्या पृथ्वी पे धन संचय, मत करो.
In verse 20, he says, but lay up for yourselves treasures in heaven.
और फिर हमें पहले कुछ नहीं करना है, फिर कुछ करना है. क्या नहीं करना है? संचय नहीं करना, लेकिन करना क्या है? स्वर्ग में धन संचय करना है.
In other words, it depends on what you yourself are doing.
और दूसरे शब्दों में ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं.
Are you laying up your treasures on earth or in heaven?
और क्या आप अपने धन को पृथ्वी पर जमा कर रहे हैं या अपने धन को स्वर्ग के ऊपर जमा कर रहे हैं?
Are you rich unto God or are you rich unto yourself?
क्या आप परमेश्वर के प्रति अमीर हैं या आप अपने लिए अमीर हैं?
Therein lies the question, are you truly prosperous?
और यहां पे प्रश्न है, क्या आप वास्तव में अमीर हैं, समृद्ध हैं?
According to our Lord, if you are laying up for yourselves treasures in heaven, you are truly prosperous.
और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अगर आप स्वर्ग में अपना धन जमा कर रहे हैं तो आप वास्तव में अमीर हैं, समृद्ध हैं, अगर आप स्वर्ग में जमा कर रहे हैं.
People on earth may not may be feeling sorry for you, but let them wait until they meet you in heaven.
हो सकता है इस पृथ्वी पे लोग आपको देख करके आपके लिए कहते हैं अरे बेचारा इसके पास तो कुछ धन नहीं है, लेकिन आप इंतजार करिए जब वो आपसे स्वर्ग मिलेंगे तो उनको पता चलेगा आप समृद्ध हैं कि नहीं हैं।
But is that the teaching that has become common today?
लेकिन क्या जिस बात जिस विषय में के बारे में बात कर रहा हूँ क्या ये शिक्षा आज सामान्य है?
Is that the teaching of the prosperity gospel?
जो समृद्धि का सुसमाचार है क्या वो लोग यह बात सिखा रहे हैं जो हम देख रहे हैं अभी?
It is not.
वो ऐसी बात नहीं करते वो लोग।
And that's why I want us to spend the next few moments looking at the teaching of prosperity gospel.
इसलिए अब अगले कुछ क्षण तक हम समय व्यतीत करेंगे ये समृद्धि के सुसमाचार के बारे में बातचीत करने के लिए।
It is sometimes referred to, at least in English, as the health and wealth gospel.
और अंग्रेजी में कम से कम कई बार इसको स्वास्थ्य का और संपत्ति का या समृद्धि के सुसमाचार के द्वारा लोगों के सामने रखा जाता है।
And its main teaching amounts to this.
और जो स्वास्थ्य और समृद्धि का सुसमाचार है उसकी मुख्य शिक्षा ये है
that God has promised very clearly in the Bible.
और वो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने वचन में बड़ी स्पष्टता के साथ वायदा किया है
that all his children should be healthy and wealthy.
कि परमेश्वर के सारे बच्चों को हमेशा अमीर होना चाहिए और उनको हमेशा बीमारी से मुक्त होना चाहिए। दो बातें अमीर और बीमारी से मुक्त।
And they are not referring to being spiritually healthy and being spiritually wealthy. No.
और ये लोग आत्मिक तौर से अमीर होने की बात नहीं कर रहे हैं और आत्मिक तौर से स्वस्थ होने की बात नहीं कर रहे हैं।
They are referring to the fact that if you are truly walking with God, you should never be sick.
बल्कि इन लोगों का ये कहना है कि अगर आप वास्तव में प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आपको कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए।
If you are truly walking with God, you should have a fat bank account.
और अगर आप वास्तव में प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आपके बैंक में ढेर सारा पैसा पड़ा रहना चाहिए।
You should have the most expensive cars parked outside your home.
और आपके घर के बाहर सबसे महंगी गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए। मारुति 800 काम नहीं चलेगा।
And you should have mansions scattered across your city and your nation.
और आपके पास बड़े-बड़े महल होने चाहिए आपके शहर में और आपके देश में।
That's what the teaching is really all about.
और यही वो लोग शिक्षा दे रहे हैं, यही बात है उनके मुख्य शिक्षा के रूप में।
And it's not me putting words into their mouths. I'm sure you hear this even here in India.
और ये बात मैं उनके मुंह में जबरदस्ती शब्द नहीं डाल रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपने खुद सुना होगा इस तरह की बातें इन प्रचारकों के मुंह से भारत में भी।
Now, of course, the question is often asked.
प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है
If that is true concerning the promises of God in the Bible, how come not all of us who are believers are always healthy and ever increasing in wealth?
और फिर प्रश्न ये पूछा जाएगा, फोन बंद कर लिए, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अगर ये बात सच है हमारे लोगों के लिए तो क्यों करके जो सारे विश्वासी इस दुनिया में हैं, क्यों करके सारे विश्वासी हमेशा स्वस्थ नहीं रहते हैं और हमेशा उनके पास पैसा क्यों नहीं रहता है?
Prosperity gospel preachers have a ready answer for that question.
और जो समृद्धि के सुसमाचार में प्रचारक होते हैं उनके पास इसका भी उत्तर तुरंत रहता है।
They say first of all that you are not what you ought to be because you don't believe the promises of God.
और वो ये कहते हैं कि तुम अभी नहीं हो जो तुम्हें होना चाहिए, मतलब तुम अमीर नहीं हो और तुम्हें अमीर होना चाहिए, तुम नहीं हो अमीर क्योंकि तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते हो।
They say that according to the Lord Jesus Christ, according to your faith, be it unto you.
और वो कहते हैं यीशु मसीह के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके विश्वास के अनुसार जैसा आप विश्वास करेंगे जैसा आप मानेंगे वैसा ही आपके साथ होगा।
So if God has given his promise and you are not believing it, well, you've got yourself to blame.
और वो कहते हैं अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है और आपके पास ये चीजें नहीं है तो फिर गलती किसकी? गलती आखिर आपकी है.
They also teach that in the second place, it's because you do not make positive confessions.
और फिर ना सिर्फ ये बात कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, दूसरी समस्या ये है कि आप लोग अपने मुख से, मुंह से सकारात्मक अंगीकार नहीं करते हैं. आप लोग सकारात्मक बातें नहीं बोलते हैं.
When you begin to feel unwell,
जब आपको बीमारी लगने लगती है,
you are quick to start saying, I am sick.
समस्या ये है कि जब आपको लगने लगता है कि आप बीमार हो रहे हैं, तो आप क्या कहने लगते हैं बड़ी जल्दी? अरे मैं तो बीमार हूं, अरे मैं तो बीमार हूं.
And they say, you must never say, I am sick.
और वो लोग ये कहते हैं कि आपको कभी नहीं कहना चाहिए, अगर आप सच्चे विश्वासी तो आपको कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं बीमार हूं. मत बोलिए ऐसा.
You must say, the devil is a liar.
आपको ये कहना चाहिए शैतान है, वो झूठ बोलने वाला है.
He is lying to you.
और वो आपसे झूठ बोल रहा है.
You must say, I am well.
आपको अपने आप से ये कहना चाहिए मैं ठीक हूं, मैं तो हूं.
I am very healthy.
मैं तो बल्कि बहुत ही स्वस्थ हूं.
And the more you say it,
और जितना अधिक आप बोलेंगे इस बात को,
the more your words create a reality.
और जितना अधिक आप बोलेंगे मैं स्वस्थ हूं, आपके शब्द एक वास्तविकता का निर्माण करेंगे, बनाएंगे.
And that reality soon becomes true about you.
और फिर वो जो वास्तविकता आपने शब्दों से निर्माण कर रहे हैं, वो आपके बारे में यथार्थ हो जाती है, सत्य हो जाती है, सही हो जाती है.
Keep saying, I am a rich man.
आप ये बोलते रहिए बार बार, मैं अमीर आदमी हूं, मैं अमीर आदमी हूं.
I am very rich.
मैं बल्कि बहुत अमीर हूं.
And before you know it, you will indeed be a very rich man.
और अगर आप बोलते रहेंगे मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, सकारात्मक अंगीकार करते रहेंगे, इससे पहले आपको पता चलेगा एक दिन आप वास्तव में अमीर आदमी बन जाएंगे.
Keep confessing positive confessions.
सकारात्मक अंगीकार की बातों को अंगीकार करते रहिए.
And then the third thing they say that explains why you are still poor.
और एक और तीसरा कारण वो लोग देते हैं कि क्यों करके आप अभी भी गरीब हैं. तो तीन कारण है, दो कारण है, तीसरा कारण क्यों आप गरीब हैं अभी भी.
Or why you continue struggling with your health.
और क्यों आप अपनी बीमारी में आप संघर्ष कर रहे हैं.
Is because you are not sowing financially.
क्योंकि आप आर्थिक रीति से बीज नहीं बो रहे हैं आप लोग.
You are like a farmer who is expecting a bumper harvest, but he hasn't sowed any seed.
आप एक उस किसान की समान हैं जो बम्पर खेती चाहता हो जाए, लेकिन उसने अभी तक बोया हुआ कुछ नहीं अभी.
Obviously, you will laugh at such a farmer.
अगर कोई किसान बिना बीज बोए आशा करेगा कि उसके पास बहुत बड़ी फल होगा, तो आप हंसेंगे उसके ऊपर, है ना कि नहीं?
But you really only laughing at yourself.
जब आप उस किसान पे हंस रहे हैं, वास्तव में आप खाली अपने ऊपर ही हंस रहे हैं.
Because you are expecting God to bless you.
क्योंकि आप आशा तो कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा.
Without you, first of all, sowing the seed into his kingdom.
लेकिन आपने स्वयं पहले होकर के उसके राज्य में अभी तक निवेश किया ही नहीं है.
And they also go on to teach us.
और फिर वो लोग आगे जाकर के हमको ये सिखाते हैं.
That farmers, the yield that farmers get depends on the richness of the soil in which they sow.
और वो हमको ये भी सिखाते हैं कि किसानी में, खेती से हमको जो फसल मिलेगी वो निर्भर करती है कि वो जो भूमि है उसमें कितना अच्छा भूमि है कि नहीं, उस पर निर्भर करती है कि नहीं करती है.
And so perhaps you might be giving money in your church.
और हो सकता है कि आप अपनी कलीसिया में पैसा दे रहे होंगे.
But perhaps your church is not fertile ground.
Oh, हो सकता है लेकिन आपकी जो कलीसिया है उसमें आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपकी कलीसिया एक उपजाऊ भूमि नहीं है.
And so they will give you a number of stories.
तो इसलिए वो आपको अनेकों कहानियां बताएंगे आपको.
Of individuals who sowed into their ministry.
और फिर वो बताएंगे अनेकों गवाहियां कहानियां कि कैसे कुछ लोगों ने उनकी सेवा में बीज बोया था.
And got back a bumper harvest financially.
और क्योंकि उन्होंने उनके सेवा में पैसे का बीज बोया था, इसलिए उनको पलट करके उनको एक बहुत बड़ा उनको फल मिला, उन्होंने फसल काटी. उसके बाद
and they say that is the kind of ministry you should sow your seed in.
और फिर वो कहते हैं इस तरह की सेविकाई में, इस तरह की जो अच्छी बीज वाली सेविकाई है उसमें आपको पैसा बोना चाहिए.
So because you are not doing those three things,
क्योंकि आप ये तीन चीजें नहीं कर रहे हैं,
that explains why the promises of God have not been achieved in your life.
तो ये बताता है कि क्यों परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पाई नहीं गई हैं।
Oh, let's put it positively.
अच्छा, इसको हम सकारात्मक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे.
If you believe,
यदि आप विश्वास करेंगे,
and continue making a positive confession,
और फिर आप सकारात्मक अंगीकार करते रहेंगे, ये हम लोग ही बोल रहे हैं, ये झूठे शिक्षक लोग बोलते हैं,
and financially so generously into this fertile ground,
और आप आर्थिक तौर से बड़े ही उदारता के साथ इस उपजाऊ भूमि में बोएंगे,
you are going to walk in physical prosperity.
तो ऐसा करने पर आप भौतिक समृद्धि में जिएंगे.
Now, the argument is that this was achieved for us already by Jesus on the cross.
और उनका ये एक और तर्क देंगे, वो ये कहते हैं कि ये जो हमारे लिए समृद्धि है वो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्रूस पर पहले से ही प्राप्त कर ली गई है.
As I already mentioned in my introduction, they go to passages such as by his stripes we have been healed.
तो वो लोग यशायाह में और पत्रस में जहां पे लिखा गया है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, वो लोग उस स्थल को बार बार बताएंगे आपके सामने.
That is found in Isaiah chapter 53.
वो है यशायाह उसके 53 अध्याय में.
And also quoted by Peter in his epistle.
और पत्रस के द्वारा अपनी पत्री में उसने उसको उद्धृत भी किया है.
And they say that you see, therefore on the cross Jesus was not only carrying our sins away.
और तो वो लोग ये कहते हैं भैया ध्यान सुनो इस बात को, क्रूस पर यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों को लेके ही नहीं चढ़े थे.
He was also carrying our suffering away.
लेकिन वो क्रूस पर यीशु मसीह हमारे दुख दर्द को भी लेकर के चढ़ गए थे.
He was also carrying our sicknesses away.
और यीशु मसीह क्रूस के पर हमारी बीमारियों को लेकर के भी चढ़ गए थे.
And remember, it says we have been healed.
और ध्यान देना यशायाह में 53 अध्याय में क्या लिखा है कि हम चंगे हो चुके हैं.
Not we are going to be healed.
अब ध्यान से इस बात को सोचिए, नहीं ये नहीं कि हम चंगे होंगे.
It is already happened in history.
लेकिन इतिहास में ऐसा हो चुका है.
Ours is to simply walk in that promise.
और जो प्रतिज्ञा हमको दी गई है अब उसको प्राप्त करके उसमें सिर्फ हमको चलना है.
We must be claiming that promise.
उस प्रतिज्ञा को तो हमें दावा करना चाहिए, अपना बना लेना चाहिए.
We must be confessing that promise.
उस प्रतिज्ञा को तो हमें अंगीकार करना चाहिए.
Indeed, we must sow a rich financial seed in order for God to realize that promise in our lives.
और वास्तव में हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होने के लिए एक बड़ा ही हमें बीज बोना चाहिए, आर्थिक बीज बोना चाहिए.
And clearly, unless we get back to that passage and really look at it, we are bound to say, there it is. Perhaps I am to blame for the fact that I am not totally healthy and very wealthy.
जब तक कि आप यशायाह को और पत्रस को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप ये कहेंगे शायद ये बात सही है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे ऊपर कोई दोष है, क्योंकि इसीलिए मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूं और मैं पूरी तरह से अमीर नहीं हूं.
Now again, I'm sure you have heard these teachings as much as I hear them back in Africa.
और मैं अपने देश में, अपने द्वीप में, महाद्वीप में इस तरह की शिक्षा को अक्सर सुनता हूं और मेरी आशा है कि आपने भी सुना होगा इस तरह की शिक्षा को.
And often these are taken out of different passages in the Bible.
और बाइबल में से अनेक स्थलों को अलग अलग तरीके से लिया जाता है समझाने के लिए शिक्षा को.
All the way from the book of Genesis where God says to Abraham, I will bless you. and you will be a blessing.
तो वो क्या करेंगे उत्पत्ति में अब्राहम से परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम लोगों के लिए आशीष होगे. तो वो लोग वो अभी स्थल लेंगे और बाइबल के कई अनेक स्थलों को लेकर के हमारे ऊपर लागू कर देते हैं.
Perhaps let's quickly go and peep there.
आइए जल्दी से हम लोग देख करके झांके वहां पे क्या हो रहा है वहां पे.
Genesis and chapter 12.
उत्पत्ति उसका 12 अध्याय. अपनी बाइबल खोल लीजिए. उत्पत्ति उसका 12 अध्याय सबसे पहली पुस्तक है आरंभ में. उत्पत्ति उसका 12 अध्याय.
Okay, Pastor Singh will read for us the first three verses.
Virginia.
Genesis 12, the first three.
उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 12 अध्याय से पहले पद से लेकर तीन पद मैं पढ़ देता हूं आपको आपके लिए. तब यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश से चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा इसलिए तू आशीष का कारण होगा. जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे शाप दें मैं उसे शाप दूंगा और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे.
And then they go to chapter 13, verse 1 and 2.
और फिर उसके बाद वो लोग उत्पत्ति के 13 अध्याय में आते हैं. 12 अध्याय के बाद 13 अध्याय. 13 अध्याय के पहले दूसरे पद में जाते हैं वो लोग. उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसके पहला और दूसरा पद. तो अब्राहम अपनी पत्नी और सारी धन संपत्ति लेकर मिस्र से निकल कर नेगेव को गया और लूत भी उसके साथ गया. अब्राहम अपने पशुओं सोने और चांदी कारण बड़ा धनी था. तब वो नेगेव से यात्रा करते हुए चला गया.
Alright, so you see there that God says to Abraham that I will bless you and you will be a blessing.
तो आप देख रहे हैं उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से. अब्राहम से कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम एक बड़ी आशीष होगे दूसरों के लिए.
And then they show in chapter 13 verse 2 Abraham being very rich in livestock, in silver and in gold.
और फिर उसके तुरंत बाद 13 अध्याय से पहले दूसरे पद में वो दिखाते हैं कि अब्राहम पशुओं में सोने और चांदी कारण बड़ा धनी था.
And they say there you have it.
और फिर वो कहते देखो 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 यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है.
God's blessing is supposed to make you rich in all these ways.
और परमेश्वर की आशीष है तुमको हर एक तरह से विशेष तौर से इन तरीके से तुमको अमीर बनाना चाहिए उसे.
Those of you who are interested in looking at the context,
और आप में से जो लोग संदर्भ को देखने में रुचि रखते हैं संदर्भ को,
will be clever enough to realize that this in fact is how Abraham was at the time God was making the promise to him.
अगर आपके पास थोड़ा सा भी बुद्धि होगी तो आप जान के देखेंगे कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और प्रतिज्ञा दी थी तो उस समय वो पहले ही से इस तरह से इतना धनी और समृद्धि था.
Because verse 3 goes on to say, and he journeyed on from the Negev as far as Bethel to the place where his tent had been at the beginning.
Okay, वहाँ पे क्या लिखा? क्योंकि अगर आप तीसरे पद को ध्यान दें तो वहाँ पे लिखा है कि उसने नेगेव से यात्रा करते बेतेल के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ आरंभ में उसका तंबू था.
In other words, he is beginning this journey with so much wealth already.
और कहने का मतलब क्या है? तीसरा पद हमको बता रहा है कि जब वो अपनी यात्रा आरंभ कर रहा है तो वो खाली हाथ नहीं यात्रा आरंभ कर रहा है, वो इतनी वस्तुओं के साथ आरंभ कर रहा है. तो आरंभ में ही शुरुआत में ही उसके पास ये सारी धन संपत्ति हैं, जब परमेश्वर उसे बुला करके प्रतिज्ञा कर रहा है उससे पहले उसके पास थी ये सब.
But anyway, my job in this session is not to try and correct anything.
ये मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं इस सत्र में ये सारी बातों को सुधारूं.
It is to simply show you the passages, that is some of the passages that are used.
लेकिन सिर्फ आपको कुछ स्थलों को दिखा देना चाहता हूँ जो लोग अक्सर गलत तरीके से उपयोग करते हैं.
So it begins all the way from the book of Genesis.
और वो आरंभ होती है उत्पत्ति की पुस्तक से.
All the way to the book of 3 John.
और यूहन्ना की तीसरी पत्री तक की आरंभ होती है.
Where we read in verse 2.
और यहां पे यूहन्ना उसके तीसरे यूहन्ना की पत्री में उसमें दूसरे पद में लिखा है हे प्रिय मेरी प्रार्थना है तू तीसरा यूहन्ना उसका उसमें दूसरा पद हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और स्वस्थ रहे।
There it is that I'm praying that you may be in good health.
और वो लोग कहते हैं कि ये पद सिखा रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम अच्छे स्वास्थ्य में रहो।
So clearly it must be God's will that God's children should be in good health.
तो इसका मतलब ये है स्पष्ट रीति से, अगर यहाँ पे ये लिखा है तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की संतानें हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में रहें।
They must not be sick.
और उनको फिर अमीर उनको कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए।
That is why Paul is making this prayer.
और इसीलिए यूहन्ना यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहा है।
Again, at this point, I will not correct it.
और फिर अब यहाँ पे मैं इसको सुधारने की कोशिश नहीं करूँगा।
I will leave it to you to think about.
और मैं छोड़ दूँगा इस पद को। आप समझिए, आप सोचिए क्या हो रहा है यार, बताइए आप क्या हो रहा है।
I'm just a little concerned that someone should be praying for people who are already well.
और मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रार्थना की जा रही उन लोगों के लिए जो पहले से ही ठीक है कि वो स्वस्थ बने रहें।
But anyway, let's move on.
अब आइए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं।
This teaching concerning prosperity.
ये जो शिक्षा है समृद्धि से संबंधित में
is a very recent phenomenon.
ये बड़ी नई बात है, ये पुरानी बात है, ये नई शिक्षा है ये।
If you were to read Christian literature going back just past 70 years ago,
यदि आप मसीह साहित्य जो कि 70 साल पीछे जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे मत जाइए, खाली 70 साल पीछे अगर आप जाएंगे,
you find very little, if anything, of this kind of teaching.
तो आप बहुत कम, अगर है भी तो बहुत कम इस तरह की शिक्षा को पाएंगे, बहुत थोड़ा।
So, how come today it's everywhere?
तो फिर कैसे, ऐसा क्या हो गया कि आज सब जगह ये शिक्षा व्याप्त है, पाई जाती है?
It causes us to want to find out where has this teaching therefore come from?
तो हम लोग को इस बात पे बात देना पड़ता है पूछने के लिए, कहां से आई है ये शिक्षा, कौन लेकर के आए थे?
Now you'll agree with me that this is largely found within Pentecostal and charismatic circles.
और आपको हमसे इस बात पे सहमत होना पड़ेगा कि इस तरह की शिक्षा अधिकांश रूप से मुख्यतः Pentecostal और charismatic कलीसियाओं में पाई जाती हैं।
Although it would be wrong to equate it with Pentecostal and charismatic teaching.
और यद्यपि ये गलत होगा ये कहना कि Pentecostal और charismatic शिक्षा का मतलब है समृद्धि की शिक्षा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा अधिकांश अक्सर पंतिकुस्त की या charismatic कलीसियाओं में पाई जाती हैं।
In fact, some Pentecostal and charismatic leaders really oppose this kind of teaching in their circle.
और वास्तव में अगर देखा जाए कुछ पेंटिकोस्ट कलीसिया के अगुए और कैरिज्मेटिक कलीसियाओं के अगुए ऐसे भी हैं जो इस समृद्धि की शिक्षा का बहुत ही विरोध भी करते हैं।
But the fact that it is almost exclusively within those circles must cause us to ask the question, what's the relationship?
और तथ्य ये है कि ये शिक्षा समृद्धि की शिक्षा अधिकांश रूप से कैरिज्मेटिक और पेंटिकोस्ट की कलीसियाओं में पाए जाता, तो हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा आखिर इन दोनों के बीच संबंध क्या है?
Let me quickly give you a sketch on how we find ourselves where we are.
मैं आपको जल्दी से बता एक आपके सामने चित्रण करना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हम हैं अब।
Until approximately 120 years ago.
लगभग 120 साल पहले तक की।
In fact, we're really going back to the beginning of the 20th century.
और हम बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के आरंभ की बात कर रहे हैं, 1900 की बात कर रहे हैं।
It was generally understood within Christianity.
मसीहत के अंतर्गत ये माना जाता था सामान्य तौर पर
that the extraordinary, miraculous gifts that we see in the book of Acts had passed away with the apostles.
और तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में ये माना जाता था, तब तक ये माना था कि प्रेरित काम की शिक्षा के साथ साथ, प्रेरित काम के साथ साथ जो प्रेरित लोग हैं उनके साथ में जो जो अति विशेष चमत्कारी कार्य हैं वो अब नहीं रहे हैं.
You can read the literature for yourselves in those periods of years.
आप स्वयं अगर आप उस समय के साहित्य को उठा करके देखेंगे तो आप देखने पाएंगे कि यह मान्यता थी लोगों की अधिकांश.
And then came the Pentecostal renewal at the beginning of the last century.
तो पिछली शताब्दी के आरंभ में लगभग 1900 की शुरुआत में आरंभ हुआ पेंटिकोस्ट का एक नया उत्तरा से उठना.
And together with the gift of tongues was also the claim with respect to the ability to do miracles, including miraculous healing.
और फिर जब पेंटिकोस्ट की कलीसिया आरंभ हुई 20वीं शताब्दी में 1900 में आरंभ में आरंभ हुई तो उसके साथ साथ लोग अन्य भाषा पे जोर देने लगे. अन्य भाषा में जोर देने के साथ साथ लोग जोर देने लगे कि हम लोग भी चमत्कार के काम कर सकते हैं.
After all, it was happening in the book of Acts, it ought to be happening today.
और तो लोग इस तरह की सोच लेके चलते हैं, अगर प्रेरितों के काम की पत्री जब लिखी जा रही थी उस समय जब चमत्कार हो रहे थे, आश्चर्यकर्म होते थे, तो वही चमत्कार वही आश्चर्यकर्म आज भी होने चाहिए हमारे बीच में.
And part of the argument to encourage believers to actually come forward to be healed,
और उनका जो एक तर्क था कि विश्वासियों को उत्साहित करा जाए कि वो आगे आकर के चंगाई को प्राप्त करें, वो ये था,
became the argument that God wants you to be healthy.
और फिर आरंभ हुआ इस बात से कि परमेश्वर तुमको चंगा करना चाहता है, क्योंकि प्रेतो काम में लोग चंगे होते थे, आश्चर्यकर्म हो रहे थे, तो आज भी होना चाहिए. तो शुरुआत अन्य भाषा और चंगाई से हुई और फिर उसी से जुड़ करके हो गया कि अगर तुम्हें चंगाई होना है तो परमेश्वर ये भी चाहता है कि तुम अमीर बनो, तुम्हारे पास पैसा हो.
If you are blind, God wants you to see. If you are lame, God wants you to be able to walk. If you are deaf, God wants you to be able to hear. If you are dumb, God wants you to be able to speak.
और तो फिर इस तरह की बातें लोग करते थे, अगर तुम बहरे हो तो परमेश्वर चाहता है कि तुम सुनो, अगर तुम गूंगे हो तो परमेश्वर चाहता है कि तुम बोलने लगो, अगर तुम अंधे हो तो परमेश्वर चाहता है कि तुम देखने लगो, अगर तुम लंगड़े हो तो परमेश्वर चाहता है कि तुम चलने लगो. इस तरह की बात लोग करने लगे.
Again, you can see the logic.
तो आप देख सकते हैं कि उनका तर्क क्या है, क्या विचार चल रहा है उनके दिमाग में.
Therefore, if you are in that state, come forward and receive God's healing.
और अगर तुम इस तरह की किसी भी शारीरिक समस्या में हो तो सामने आओ, परमेश्वर की चंगाई को इस समय इसी वक्त स्वीकार करो, प्राप्त करो.
Next step.
और क्योंकि ये पहला कदम है चंगाई का, तो फिर अगला कदम क्या हुआ?
If God wants me to be healthy, then all I need to do is to refuse sickness.
तो हम क्या कहेंगे? अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं स्वस्थ बनूं, तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ नकारना है सारी बीमारियों को, कहना है, मना करना है, हटाना है अपने सामने से.
To refuse it in exactly the same way that I resist temptation.
और कैसे हमें नकारना बीमारियों को? हमें बीमारियों को उसी तरह से नकारना है जैसे कि हम परीक्षाओं को नकारते हैं. बात समझ नहीं समझ? परीक्षा हमारे सामने प्रलोभन आते हैं तो हम प्रलोभन को नकारते हैं, उसी तरह से हमें अपने अंदर जो बीमारियां हैं उनको भी नकारना है. ये दिमाग में चल रहा उनके.
These things are coming from the devil, and consequently, I ought to resist them.
ये सब जो बीमारियां हैं, ये सब शैतान की ओर से आ रही हैं, सागर भैया. इसलिए हमको इनका प्रतिरोध करना है. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
By the time you are reaching the middle of the 20th century,
और जब हम 20वीं शताब्दी के मध्य लगभग 1950 तक पहुंचते हैं.
So we are now 50 years in which all this is happening.
तो लगभग 50 साल हो चुके हैं ये पेंटिकोस्ट की कलीसिया का आरंभ हुए, 1900 के आरंभ 1905 से शुरू हुआ है, 1950 में हम पहुंच गए.
the next logical step began to fall into place.
तो जो पहला कदम था तो वो उठ गया, अब जो दूसरा तर्क के अनुसार जो कदम है वो भी आने लगा.
God is not only interested in a healthy body.
और परमेश्वर सिर्फ एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही रुचि नहीं रखता है.
Those who were propagating this began to add that he is also interested in a healthy pocket.
और वो ये कहने लगे कि परमेश्वर सिर्फ तुम्हारे स्वस्थ शरीर में रुचि नहीं रखता है, लेकिन वो तुम्हारे स्वस्थ जेब में भी रुचि रखता है.
That these two go together.
कि तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारी जेब ये दोनों साथ में चलती, दोनों को स्वस्थ होना चाहिए.
And this was offered by an appeal to passages such as Leviticus 26.
और ये मालूम कैसे कह रहे थे लोग, अक्सर लेवव्यवस्था उसके 26 अध्याय वाले पद को उठा देते और उसके अनुसार बात करते थे वो लोग.
And Deuteronomy 28.
और व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय.
For now, we will limit ourselves to Deuteronomy.
अब फिलहाल के लिए आइए हम देख लें व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय.
These two passages are basically parallel passages.
और व्यवस्था से 26 अध्याय और व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय ये दोनों समानांतर स्थल हैं.
Let's quickly turn to Deuteronomy 28.
आइए हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय को देख लें जल्दी से.
What I want you to notice is from verse 1 to verse 14.
और मैं चाहता हूँ कि आप एक पद से लेकर 14 पद पे ध्यान दें.
It is talking about the blessings of obedience.
और व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 14 पद में आज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप आशीषों का वर्णन किया गया है.
Then from verse 15 all the way to the end.
और फिर उसके 15 पद से लेकर के अंत तक की 68 पद तक की.
It is talking about God's curses because of disobedience.
यहाँ पे बातचीत की जा रही परमेश्वर के श्रापों के बारे में अनाज्ञाकारिता के परिणाम के रूप में.
And what I want you to notice there is how the physical well-being and the physical prosperity seem to go together.
और तो यहाँ पे जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं तो यहाँ पे शारीरिक समृद्धि और शारीरिक फिजिक और
सो द पॉकेट एंड द बॉडी.
ओके, शारीरिक संबंधी समृद्धि और आर्थिक समृद्धि दोनों साथ में दिख रही हैं. देख मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप शारीरिक रूप से चंगे हैं तो आप भौतिक रूप से पैसे के मामले में भी आप ठीक ठाक हैं.
लुक फॉर इंस्टेंस At verse 4.
उदाहरण तौर पर चौथे पद को देखिए, 28 के 14 पद को. धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि के उपज, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे मवेशियों के बढ़ती और तेरे रेवड़ के मेमने.
Again, quickly look with me at verse 11 and verse 12.
अच्छा, मेरे साथ जल्दी देख लीजिए 11 और 12 पद भी 28 अध्याय के व्यवस्था विवरण 28 अध्याय से 11 और 12 पद. जिस देश को तुझे देने के लिए यहोवा ने तेरे पुरुष शपथ खाई थी, उस देश में यहोवा तेरी संतान में, तेरी पशुओं के बच्चों में तथा तेरी भूमि के ऊपर में तुझे समृद्ध करेगा. यहोवा तेरी भूमि को उसकी ऋतु में वर्षा देने के लिए और तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष देने के लिए आकाश रूपी अपने भले भंडार को खोल देगा. तब तो अनेक जातियों को ऋण देगा परंतु स्वयं ऋण नहीं लेगा.
Have you noticed how a healthy womb is also being mirrored in the fields with the crops there?
और क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे एक जो स्वस्थ जो कोख है उसका प्रतिबिंबित किया जा रहा है एक बढ़िया उपजाऊ जमीन पर, भूमि पर भी. तो दोनों एक साथ चल रहे हैं.
Now look at verse 16.
अब आप मेरा 16 पद को देखिए.
Oh, sorry, verse 18.
माफ कीजिएगा, 28 अध्याय के 18 पद में क्या लिखा है? शापित हो तेरे संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरी मवेशियों की बढ़ती और तेरे रेवड़ के बच्चे.
And then we also see the same thing in verse 21 down to verse 24.
और यही बात हम 21 पद से लेकर 24 पद में भी देखते हैं. जब तक वो तुझे उस देश से जिसे तू अधिकार में करने के लिए उसमें प्रवेश करने पर है मिटाना डाले, या वह तुझको क्षय, ज्वर, जलन, भयंकर ताप, तलवार, झुलस तथा गिरोह से मारेगा. और वे तब तक तेरे पीछे लगे रहेंगे जब तक तू सत्यनाश ना हो जाए और तेरे सिर के ऊपर आकाश कांसा तथा तेरे पांव तले धरती लोहा बन जाएगी। यहोवा तेरे देश में वर्षा के बदले रेत और धूल बरसाएगा, वे आकाश से तब तक बरसती रहेंगी जब तक कि तू धूल में मिल ना जाएगा।
So you see there again, God is saying, as part of the curse, I will send disease and I will also send drought.
और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पे इस्राएलियों से कह रहा है कि श्राप के कारण उनके ऊपर परमेश्वर सूखा भेजेगा और परमेश्वर उनके सामने समस्याओं को बीमारियों को खड़ा करेगा।
So you are going to be sick. And there will be nothing coming out of your farming. You will be broke.
और वे परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम बीमार होगे उस श्राप की वजह से और तुम गरीब हो जाओगे और सूखा पड़ेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास।
And hence, by the time we are reaching the end of the 20th century,
और 20वीं शताब्दी के अंत तक पहुंचते 1990-1980 तक पहुंचते
these two are now together.
तो शुरुआत हुई थी खाली शारीरिक, खाली पहले अलौकिक शक्तियों से, फिर चंगाई से, फिर आर्थिक से, फिर अब 19वीं शताब्दी की खत्म हो 20वीं शताब्दी खत्म होते होते ये दोनों साथ हो गए, भौतिक और शारीरिक, पैसा और स्वास्थ्य।
It all began somewhere at the beginning of the 20th century, very innocent.
और ये सब आरंभ हुआ था 20वीं शताब्दी के आरंभ में, लगभग 1905 में, जब पेंटेकोस्ट का काम शुरू हुआ, बहुत ही सीधा साधा दिखने में था उस समय।
And indeed, in many Pentecostal and charismatic churches, that is still where they stop.
और वास्तव में देखा जाए तो सच बात है कि अभी भी अधिकांश पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में और charismatic कलीसियाओं में वहीं पे रुक जाते हैं वो लोग।
They simply want to pray for you. Come forward to be prayed for if you are sick.
वो सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं अगर आप बीमार हैं, सिर्फ इतना ही करना चाहते हैं, इससे ज्यादा इससे कम कुछ नहीं करना मांगते वो लोग।
But now it has given birth to this opposite extreme.
लेकिन अब वो उस बात ने जो कि दिखने में बड़ा ही सीधा साधा लग रहा था, उसने एक बड़े ही चरम स्थिति की शिक्षा को जन्म दे दिया है।
Where there is a completely new teaching now.
और अब ये तो बिल्कुल नई प्रकार की शिक्षा बन गई है,
which is largely about health and wealth.
और ये शिक्षा मुख्यतः स्वास्थ्य के बारे में है और संपत्ति के बारे में है,
which seems to suggest that if you are unwell physically, you must be unwell spiritually.
और ये कहते हैं कि अगर तुम आर्थिक रीति से ठीक नहीं हो तो मतलब ये है कि तुम आत्मिक रीति से ठीक नहीं हो। समझिए, आर्थिक रीति से कमजोरी का मतलब, अगर तुम गरीब हो मतलब तुम आत्मिक रीति से बचे नहीं हो, चंगे नहीं हो, गड़बड़ है कुछ।
And your bank account reflects how you are in your heart spiritually.
और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि तुम्हारी आत्मिक स्थिति कैसी है, तुम्हारा हृदय में क्या चल रहा है।
And as though to prove this,
और फिर इस बात को साबित करने के लिए,
preachers who teach this kind of prosperity,
और जो प्रचारक लोग हैं इस तरह की समृद्धि को सिखाएंगे,
are themselves very, very prosperous today.
जो जो प्रचारक लोग इस बात की शिक्षा देते हैं वो लोग स्वयं बहुत ही अमीर होते हैं अक्सर।
And they don't hide it.
और वे लोग छिपाते भी नहीं कि हम अमीर हैं।
They boast about their wealth.
बल्कि वो लोग अपने धन संपत्ति के बारे में लोगों के सामने बड़े बड़े डींगे मारते हैं, दिखाते हैं, शेखी बगाड़ते हैं।
About the mansions they possess.
वो बताते हैं कितने बड़े बड़े महल हैं हमारे पास।
The expensive cars that they have.
वो बताते हैं कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं उनके पास।
And they will tell you that it's because they have believed God's promises.
और फिर वो बताते हैं कि हमारे पास इसलिए बड़े बड़े मकान है, इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं क्योंकि हमने परमेश्वर की प्रति पे विश्वास किया था।
That it's because they have been making a positive confession.
क्योंकि वो लोग सकारात्मक अंगीकार करते आए हैं अपने जीवन भर।
Because they have been sowing in their own fertile ministry.
क्योंकि वो लोग स्वयं की जो बड़ी ही उपजाऊ सेवकारी है, सेवा है, उसमें उन लोगों ने बड़े ही ध्यान से बीज बोए थे।
I want us today and tomorrow to seriously address this.
और मैं चाहता हूँ कि आज और कल हम लोग बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय पे बातचीत करें हम लोग।
Let's now take a break.
आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे।
Pray for us.
हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम चाय पीने जाएंगे, फिर वापस आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम आपके सामने आज की सुबह आते हैं इस बात को जानते हुए कि हम में से सब के सब किसी न किसी समय या किसी न किसी रीति से इस समृद्धि के सुसमाचार पर हमने विश्वास किया है। प्रभु जी हम वो क्षमा करें कि हम सच्चे सुसमाचार को छोड़ करके बड़ी आसानी से इस भ्रांति की ओर, इस गलत शिक्षा की ओर मुड़ जाते हैं। हम पर दया करें, जब हम बातचीत करते हैं इसके विषय में हमें नम्र करें कि हम सच्चाई को जानने के लिए तैयार हो सकें और यीशु मसीह में हम संतुष्ट रहें जो काम यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर किया है। प्रभु जी आप आदर पाए, आप ऊंचे को उठाए जा सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।